एकत्र ज्ञानुगोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानुगोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो दुनिया भर में और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में आजकल काफी चर्चा में है।
हाँ, स्कूल चयन मतलब स्कूल चुनने की आजादी।
बिल्कुल,
ये अमेरिका में तो मुझे लगता है दशकों से इस पे बहस चल रही है।
हाँ, गरमाया हुआ मुद्दा है वहाँ, लेकिन इसके जो सिद्धांत हैं और जो असर हो सकते हैं वो हर उस देश के लिए जरूरी हैं जहाँ शिक्षा में मतलब सुधार और बराबरी लाने की बात हो रही है।
और आज हम जो बात कर रहे हैं वो डेविड आर गार्सिया के काम पर आधारित है। उनका विश्लेषण समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ, और गार्सिया का विश्लेषण इसलिए भी खास है क्योंकि ये हमें वो जो तेज बहस होती है ना, पक्ष विपक्ष वाली।
हाँ हाँ बिल्कुल
है
सही।
आज के जमाने में ये समझना बहुत जरूरी है कि जब परिवारों को स्कूल चुनने के ज्यादा विकल्प मिलते हैं तो असल में होता क्या है, क्या फर्क पड़ता भी है।
सही कहा। और ये आवाज आ कहां से रही है ये भी जानना जरूरी है। तो ये डेविड आर गार्सिया कौन है? ये
एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ मैरी लू फुल्टन टीचर्स कॉलेज में शिक्षा नीति के प्रोफेसर हैं।
अच्छा।
और इनका करीब समझ लीजिए 2 दशकों का अनुभव है शिक्षा की नीतियों को, उसकी राजनीति को और जमीनी हकीकत को समझने में।
और एरिजोना तो वो जगह है जहाँ स्कूल चयन को लेकर शायद सबसे ज्यादा खुली नीतियाँ हैं अमेरिका में।
हाँ बिल्कुल, कुछ लोग तो मजाक में कहते हैं कि वो स्कूल चयन का वाइल्ड वेस्ट है।
हाँ सुना है।
तो गार्सिया को वहाँ रहते हुए इन पॉलिसीज को मतलब बनते बिगड़ते लागू होते बहुत करीब से देखने का मौका मिला है। वो सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रहे।
सही, मतलब प्रैक्टिकल अनुभव भी है, सिर्फ अकादमिक नहीं।
जी हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसी एक तरफ झुके हुए नहीं लगते, वो अनुभवजन्य साक्ष्यों पर जोर देते हैं।
अनुभवजन्य साक्ष्य मतलब जो डेटा और रिसर्च से निकल कर आता है।
हाँ, जो असल दुनिया के सबूत होते हैं, इसीलिए उनको दोनों तरफ के लोगों से तारीफ भी मिलती है और आलोचना भी।
और एक और बात आपने बताई थी कि वो द्विभाषी हैं और लातिनी समुदाय की शिक्षा पर भी उनका फोकस है।
हाँ, ये भी उनके काम को एक अहमियत देता है। उनके विश्लेषण में एक जिसे कहते हैं ना समानता और न्याय का पहलू भी जुड़ता है। वो उन आवाजों को भी जगा देते हैं जो अक्सर ऐसी बहसों में पीछे रह जाती हैं।
तो मूल बात क्या है गार्सिया के विश्लेषण की, मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं?
देखिए, स्कूल चयन पर दशकों से जो एक बटी हुई सी बहस चल रही है ना,
हाँ,
कि अच्छा है या बुरा, वो उससे आगे बढ़कर देखना चाहते हैं कि भाई जब परिवारों को स्कूल चुनने के ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं तो जमीन पर होता क्या है, वो शोर शराबे से हटकर तथ्य क्या है।
अच्छा, तो ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, मतलब आम लोग, पेरेंट्स, पॉलिसी मेकर्स, सबके लिए है।
बिल्कुल, लक्ष्य यही है कि सबको एक साफ तस्वीर मिले जो किसी विचारधारा पर नहीं बल्कि सबूतों पर आधारित हो। जो भी इस मुद्दे को हेडलाइन से आगे जाकर समझना चाहता है उसके लिए ये जरूरी है।
ठीक है, तो ये विश्लेषण हमें कहाँ ले जाता है, शुरुआत कहाँ से होती है?
ये एक सफर जैसा है। शुरू होता है स्कूल चयन के आइडिया के इतिहास से। कैसे ये सोच जो पहले बहुत छोटी सी थी धीरे धीरे मेनस्ट्रीम पॉलिसी बन गई। इसके पीछे क्या कारण थे, क्या सिर्फ बाजार वाली सोच थी या जो स्कूल अच्छा नहीं कर रहे थे उनसे बचने की कोशिश, इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प है।
हाँ, ये जानना जरूरी है। फिर आगे?
फिर ये अलग अलग तरह के जो चयन के तरीके हैं ना, उनकी बारीकियों में जाता है। जैसे सरकारी स्कूलों में ही चुनने का ऑप्शन।
हाँ।
या फिर चार्टर स्कूल जो सरकारी पैसे से चलते हैं पर ज्यादा आजाद होते हैं।
अच्छा।
या फिर वाउचर जहां सरकार पैसे देती है प्राइवेट स्कूल के लिए, और अब तो वो एजुकेशन सेविंग्स अकाउंट जैसी नई चीजें भी आ रही हैं। तो ये विश्लेषण देखता है कि ये सब असल में काम कैसे करते हैं और रिसर्च क्या कहती है इनके असर के बारे में।
और ये सिर्फ पढ़ाई के नंबरों तक ही सीमित है या और भी चीजें देखता है?
नहीं नहीं, ये और भी कई जुड़े हुए सवाल उठाता है। जैसे क्या चुने हुए स्कूल वाकई बच्चों के नतीजों में सुधार लाते हैं?
हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है।
फिर इससे फायदा किसे होता है, कौन पीछे रह जाता है, मतलब बराबरी वाला एंगल,
इक्विटी।
और जो पुराने सरकारी स्कूल हैं उन पर क्या असर पड़ता है, पूरे एजुकेशन सिस्टम पर क्या असर पड़ता है।
Right.
और जब प्राइवेट या सेमी प्राइवेट संस्थाएं शिक्षा में आती हैं तो उससे जुड़ी राजनीतिक और गवर्नेंस की क्या चुनौतियां हैं, ये पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश है।
ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आपने कहा स्कूल चयन कोई एक चीज नहीं है।
हाँ, ये पहली और सबसे जरूरी बात है। गार्सिया यही समझाते हैं ये कई अलग अलग पॉलिसीज का एक ग्रुप है।
जैसे?
जैसे अभी बात की, प्राइवेट स्कूल वाउचर हो गए, चार्टर स्कूल हो गए, मैग्नेट स्कूल होते हैं जो किसी खास सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, ओपन एनरोलमेंट होता है, मतलब किसी भी सरकारी स्कूल में जा सकते हैं। इन सबके काम करने का तरीका अलग है, इनके नतीजे भी अलग अलग हो सकते हैं।
तो सबको एक साथ तौलना ठीक नहीं?
बिल्कुल नहीं।
तो फिर वो बड़ा सवाल, क्या ये काम करता है?
हाँ, और गार्सिया का जवाब बड़ा मजेदार है, वो कहते हैं ये निर्भर करता है।
अच्छा, मैं मतलब कोई सीधा हाँ या ना नहीं?
नहीं, जैसा कि बहसों में अक्सर लगता है कि या तो ये रामबाण है या फिर एकदम बेकार, रिसर्च के नतीजे मिले जुले हैं, अक्सर असर मामूली होता है और बहुत ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कहाँ लागू हो रही है और कैसे लागू हो रही है।
जरा उदाहरण से समझते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर दिखता है, वाउचर का क्या हिसाब है?
हाँ, वाउचर जहाँ सरकार प्राइवेट स्कूल के लिए पैसे देती है, कुछ शुरू की स्टडीज में लगा था कि शायद थोड़ा फायदा है, खासकर कुछ खास ग्रुप्स के बच्चों के लिए। लेकिन हाल की जो बड़ी और ज्यादा भरोसेमंद स्टडीज हुई हैं, उनमें अक्सर कोई खास फर्क नहीं दिखा, और कुछ मामलों में तो जैसे लुइजियाना या ओहायो में वाउचर इस्तेमाल करने वाले बच्चों ने शुरू में थोड़ा खराब परफॉर्म किया सरकारी स्कूल के बच्चों के मुकाबले।
अरे, तो ये तो उल्टा हो गया।
हाँ, तो मतलब वाउचर कोई जादू की छड़ी तो नहीं निकले।
ठीक है, और चार्टर स्कूल हुआ क्या? वो तो काफी चर्चा में रहते हैं।
हाँ, चार्टर स्कूल जिन्हें सरकारी पैसा मिलता है पर चलाने की आजादी ज्यादा होती है, उनकी कहानी भी सीधी नहीं है। अगर आप एवरेज देखें तो वो पारंपरिक पब्लिक स्कूलों जैसा ही परफॉर्म करते हैं।
अच्छा, एवरेज में?
हाँ, लेकिन इस एवरेज के पीछे बहुत वेरिएशन है। कुछ चार्टर स्कूल नेटवर्क, खासकर शहरों वाले, जैसे एक किप नाम का नेटवर्क है।
हाँ, सुना है किप के बारे में।
उन्होंने वाकई बहुत अच्छे नतीजे दिखाए हैं, खासकर गरीब और वंचित बच्चों के लिए। वो अक्सर बहुत सख्त मॉडल पर चलते हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा वाला। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से दूसरे चार्टर स्कूल, खासकर जो मुनाफे के लिए चलते हैं या जो पूरी तरह ऑनलाइन है,
हाँ, ऑनलाइन वाले भी हैं,
उनका प्रदर्शन काफी कमजोर पाया गया है। तो सिर्फ चार्टर स्कूल का लेबल काफी नहीं है।
ये तो साफ है कि सिर्फ विकल्प मिल जाने से ही पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है। कोई जादू की छड़ी नहीं है ये।
बिल्कुल।
अच्छा, अब जरा इसके थोड़े और बड़े असर देखते हैं। एक तर्क ये दिया जाता है कि जब स्कूलों में कंपटीशन होगा तो पुराने सरकारी स्कूल भी सुधरेंगे, क्या ऐसा होता है?
सबूत बताते हैं कि हाँ, कंपटीशन का थोड़ा असर तो होता है।
थोड़ा?
हाँ, लेकिन आमतौर पर यह असर बहुत बड़ा नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि नए स्कूल खुलते ही पुराने सारे स्कूल एकदम चमक जाते हैं, असर होता है पर मामूली।
ठीक है, और वो बराबरी वाला सवाल, सेग्रीगेशन यानी अलगाव, ये तो बड़ी चिंता रहती है।
हाँ, ये बहुत बड़ी चिंता है। क्या चयन से वो बच्चे पीछे छूट जाते हैं जिनके परिवार के पास साधन कम है? रिसर्च यहाँ भी एक मिलीजुली तस्वीर दिखाती है।
कैसे?
कुछ वाउचर प्रोग्राम में देखा गया कि बच्चे बहुत ज्यादा अलग थलग पड़े सरकारी स्कूलों से निकलकर ऐसे प्राइवेट स्कूलों में गए जहाँ थोड़ा कम अलगाव था, तो ये तो थोड़ा पॉजिटिव हुआ। लेकिन चार्टर स्कूलों के मामले में अक्सर ये पाया गया है कि स्कूल के अंदर ज्यादा अलगाव होता है। मतलब उसी स्कूल में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे शायद उतने घुलते मिलते नहीं जितना उन सरकारी स्कूलों में घुलते मिलते थे जहां से वो आए थे।
अरे, ये तो चिंता की बात है।
हाँ, ये वाकई एक अहम पहलू है।
तो फिर पॉलिसी का डिजाइन बहुत जरूरी हो जाता है ना?
बिल्कुल, यहीं पर डिजाइन की बात आती है। सोचिए अगर किसी परिवार के पास बच्चे को चुने हुए स्कूल तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट ही ना हो।
हाँ, या उन्हें पता ही ना चले कि अप्लाई कैसे करना है, कौन सा स्कूल अच्छा है।
एग्जैक्टली, ये सब असली बाधाएं हैं। अगर इन चीजों का ध्यान रखे बिना पॉलिसी बना दी तो वो मौजूदा गैर बराबरी को और बढ़ा सकती है।
तो गार्सिया इसी को इक्विटी पैराडॉक्स कहते हैं, समानता का विरोधाभास।
हाँ, यही वो विरोधाभास है कि नीतियां समानता बढ़ाने का दावा करती हैं पर गलत डिजाइन से उसे कमजोर भी कर सकती हैं। ये वाकई एक पहेली है।
लेकिन एक चीज है शायद, पेरेंट्स की संतुष्टि। मैंने सुना है कि जो पेरेंट्स स्कूल चुनते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं।
हाँ, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ स्कूल चयन कार्यक्रम लगातार पॉजिटिव नतीजे दिखाते हैं।
अच्छा,
जो माता पिता स्कूल चुन पाते हैं वो अक्सर पारंपरिक सरकारी स्कूलों के पेरेंट्स से ज्यादा संतुष्ट होते हैं। शायद इसलिए कि उन्हें लगता है स्कूल का माहौल या पढ़ाने का तरीका उनके बच्चे के लिए ज्यादा फिट है।
हाँ, ये भी एक जरूरी बात है, संतुष्टि भी मायने रखती है।
बिल्कुल,
कभी कभी ये संतुष्टि शायद नतीजों से भी ज्यादा जरूरी लगती है परिवारों को।
पर यही वो जानकारी वाली बात फिर आ जाती है।
हाँ, सूचना की भूमिका। क्या सभी पेरेंट्स के पास उतनी जानकारी, उतना समय, उतने साधन होते हैं कि वो इन सिस्टम्स को समझें?
मुश्किल है।
स्कूलों की क्वालिटी को परखें, फिर एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस करें। गार्सिया का तर्क है कि अक्सर ऐसा नहीं होता,
खासकर उन परिवारों के लिए जिनके पास साधन कम है।
हाँ बिल्कुल, जानकारी का ये अंतर, ये इन्फॉर्मेशन गैप बराबरी के मौके देने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। कहते हैं ना, जानकारी ही शक्ति है,
और वो शक्ति सब तक बराबर नहीं पहुंचती।
सही कहा।
तो इस पूरी चर्चा से, गार्सिया के विश्लेषण से मुख्य बातें क्या निकलती हैं, क्या बड़े सबक हैं?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात, किसी पॉलिसी का सिर्फ नाम या लेबल मत देखिए, उसका संदर्भ और डिजाइन सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक ही पॉलिसी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लागू होने पर बिल्कुल अलग नतीजे दे सकती है। वहाँ के हालात क्या हैं, उसे जमीन पर उतारा कैसे गया है, ये सब देखना होगा।
सही। दूसरी बात?
दूसरी वो समानता का विरोधाभास वाली बात। समानता एक दोधारी तलवार है।
हाँ।
चयन से वंचित छात्रों को मौके मिल सकते हैं, पर अगर सावधानी से डिजाइन न हो तो ये गैर बराबरी बढ़ा भी सकता है। इसके लिए अलग से कोशिश करनी पड़ती है, जैसे ट्रांसपोर्ट देना, सही जानकारी देना।
मतलब समानता अपने आप नहीं आएगी, लानी पड़ेगी।
एग्जैक्टली, उसके लिए काम करना पड़ेगा।
ठीक है, तीसरा सबक?
तीसरा, नीति का इरादा कितना भी अच्छा हो, उसे लागू कैसे किया जा रहा है ये ज्यादा मायने रखता है।
इम्प्लीमेंटेशन ट्रम्प्स इंटेंट।
हाँ।
अच्छा।
अच्छी नीयत वाली पॉलिसी भी अगर ठीक से लागू ना हो तो फेल हो सकती है। एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा है, ट्रांसपोर्ट है या नहीं, जानकारी कैसे दी जा रही है, स्कूलों पर नजर कैसे रखी जा रही है, ये सब बहुत जरूरी है।
कागज पर अच्छी लगने वाली चीज जमीन पर भी काम करनी चाहिए।
बिल्कुल।
चौथा पॉइंट?
चौथा, सिर्फ बाजार के भरोसे नहीं रह सकते। बाजार आधारित जवाबदेही की अपनी सीमाएं हैं। मतलब ये सोचना कि पेरेंट्स चुन लेंगे और सब ठीक हो जाएगा।
हाँ।
ये पूरी तरह सही नहीं है। जानकारी की कमी हो सकती है, दूसरी रुकावटें हो सकती हैं, इसलिए सरकारी निगरानी और जवाबदेही के तरीके भी जरूरी हैं। सिर्फ बाजार पर छोड़ना काफी नहीं है।
सही।
और आखिरी मुख्य बात,
और आखिरी में शायद सबसे जरूरी, सबूत विचारधारा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है।
गार्सिया का काम यही याद दिलाता है, जोशीले लारों के बजाय असली सबूतों पर ध्यान दे। सिर्फ हाँ या ना में ना उलझें, ये पूछें कि कौन सी चीज किसके लिए, किन हालात में और किन सुरक्षा उपायों के साथ काम करती है।
मतलब बारीकियों पर ध्यान देना।
जी हाँ।
गार्सिया के विश्लेषण में कुछ ऐसी लाइनें भी हैं जो याद रह जाती हैं, जैसे वो कहते हैं कि स्कूल चयन एक नीति नहीं बल्कि नीतियों का एक संग्रह है।
हाँ, जिनमें से प्रत्येक के अलग अलग तंत्र, लक्षित आबादी और संभावित प्रभाव होते हैं। ये हमें चीजों को सिंप्लीफाई करने से रोकता है।
सही। और एक और बात जो आपने पहले भी कही, सवाल ये नहीं है कि स्कूल चयन काम करता है या नहीं, बल्कि ये है कि किसके लिए, किन परिस्थितियों में और किन सुरक्षा उपायों के साथ काम करता है।
हाँ, ये सवाल पूछने का सही तरीका है। ये पूरी बहस को एक नई दिशा देता है जो बारीकियों पर फोकस करती है।
और बाजार की भूमिका पर वो टिप्पणी भी दमदार है। बाजार शिक्षा में सुधार के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं, लेकिन जब समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात आती है तो वे अपने आप सही नहीं होते।
बिल्कुल, ये बाजार की सीमाओं को साफ करता है और पब्लिक ओवरसाइट की जरूरत बताता है।
और आखिर में वो बात जो सच में सोचने पर मजबूर करती है, जिन परिवारों को शैक्षिक विकल्पों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वे अक्सर जटिल चयन प्रणालियों को नेविगेट करने के लिए सबसे कम सुसज्जित होते हैं।
हाँ, ये सीधा समानता की चुनौती की जड़ पर चोट करता है और बताता है कि हमें उन तक पहुंचने के लिए खास मदद करनी होगी।
तो इन सब बातों का असल जिंदगी में क्या मतलब है? अगर कोई परिवार स्कूल के ऑप्शन देख रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए?
गार्सिया के विश्लेषण से यही सीख मिलती है कि सिर्फ मार्केटिंग या स्कूल के शोहरत पर न जाएं। उन्हें स्कूल के असली अकादमिक नतीजों, टीचरों की क्वालिटी, स्कूल के माहौल, बच्चों को मिलने वाली मदद, इन सब के बारे में डेटा और जानकारी मांगनी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए।
सही। और जो लोग नीतियां बनाते हैं या समाज में काम करते हैं,
उनके लिए संदेश साफ है, सिर्फ स्कूल चयन कार्यक्रम बना देना काफी नहीं है, उसके डिजाइन पर ध्यान देना सबसे जरूरी है।
जैसे
क्या सभी तरह के स्कूलों के लिए जवाबदेही के नियम बराबर और मजबूत हैं? क्या फंडिंग ठीक से हो रही है, क्या गरीब परिवारों के लिए ट्रांसपोर्ट और साफ निष्पक्ष जानकारी है।
मतलब सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि असली सुलभ और अच्छे विकल्प बनाने होंगे।
बिल्कुल, ये जमीनी हकीकतें ध्यान में रखनी होंगी।
और एक बात ये भी है कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं है।
हाँ, ये एक सार्वजनिक भलाई भी है। इसका लक्ष्य बेहतर नागरिक बनाना, समाज को जोड़ना भी है। तो ये भी सोचना होगा कि स्कूल चुनने की इन व्यवस्थाओं में ये बड़े सामाजिक लक्ष्य कैसे सुरक्षित रहें।
ये एक बड़ा सवाल है।
बिल्कुल।
तो आपके लिए इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि स्कूल चयन जैसे जो जटिल मुद्दे होते हैं ना, उन पर आसान जवाब शायद ही कभी सही होते हैं। चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती।
हाँ, ग्रे एरिया बहुत होता है।
हाँ,
हमें विचारधाराओं की शोर से हटकर सबूतों को देखना होगा और ये समझना होगा कि नीतियों का असली असर उनके डिजाइन और उन्हें लागू करने के तरीके पर टिका होता है।
और मेरे लिए वो समानता का विरोधाभास वाली बात दिमाग में रह गई। ये याद रखना कितना जरूरी है कि अच्छी नीयत भी काफी नहीं है।
हाँ,
अगर पॉलिसी को सावधानी से डिजाइन और मॉनिटर न किया जाए तो वो अनजाने में गैर बराबरी बढ़ा सकती है। सिर्फ चयन का नारा काफी नहीं है, उसके साथ न्याय और समान पहुंच भी जरूरी है।
बिल्कुल, नेक इरादे और सही क्रियान्वयन दोनों चाहिए। गार्सिया का काम यही दिखाता है कि जब बहसें बहुत राजनीतिक हो जाती हैं, तो एक सूक्ष्म सबूत आधारित विश्लेषण कितना जरूरी हो जाता है।
सही कहा। और अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने अमेरिका के संदर्भ में ये सब देखा, भारत जैसे देश में जहाँ की सामाजिक शैक्षिक हकीकत बिल्कुल अलग है, क्या स्कूल चयन जैसे मॉडल के कुछ पहलू काम कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो हमें किन खास सावधानियों का ध्यान रखना होगा? ये सवाल भविष्य के लिए बहुत अहम है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।